بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. في سورة الأنعام سورة الضحى जिसको हम कहते हैं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा की सूरत। इस सूरत में खास तौर पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान किया। आपकी जिंदगी में बड़े हालात आए, उन हालात में एक इंसान टूट जाता है, गिर जाता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला। आपके हौसले को अल्लाह ने ऊंचा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल में कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए इतनी बड़ी फायदे की बातें। एक वक्त वो आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 वर्ष की हुई। आपके दिल में कुदरती तौर पर अकेले अकेले रहने की चाहत पैदा हुई कि मैं लोगों से हट के जरा दूर रहूं, अकेला अकेला रहूं, तन्हाई में रहूं, एकांत में रहूं। मक्का से दूर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है, गार है, जिसको गारे हीरा कहते। आज भी उस गुफा की पोजीशन ऐसी है कि उसमें जाना और अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल है। डर लगता है कि आदमी नीचे गिर जाए। फजर की नमाज पढ़ के अगर आदमी धीरे धीरे चढ़ना शुरू करे तो तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद उस गुफा तक चढ़ सकता है। और गर्मी मक्के मुकर्रमा की बड़ी खतरनाक होती है, उस गर्मी में चढ़ना तो और मुश्किल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुफा में जाते थे और अकेले बैठे रहते थे। कुछ सूखा सूखा नाश्ता खाने के लिए ले जाते, कभी 8 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन वहाँ अकेले रहते और अल्लाह 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 वहाँ बैठकर करते। फिर खाना नाश्ता खत्म हो जाता तो हुजूर घर आते। उस वक्त आपकी एक ही बीवी थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो आपको फिर नाश्ता तैयार कर दे, हुजूर फिर चले जाते। 6 महीने ऐसे गुजर गए और 6 महीने के बाद एक दिन हजरत जिब्राइल अमीन आए और कुरान की पहली 5 आयतें सुनाई, जो आगे 34 सूरत आ रही करा जिसमें वर्जित वहां उसका वाक्य आएगा। जब पहली 5 आयतें उतरी, जिब्राइल को पहचान नहीं सकी कि कौन है, वहां से उतर करके हुजूर आए और आपको एकदम ठंडी लग रही, बुखार आ गया, बदन में खेच आ रही। आपने हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ा दो, कंबल ओढ़ा दो, मैं सो जाता। हुजूर सो गए। बहुत दिन गुजर गए, हजरत जिब्राइल आए नहीं और कुदरती एक मुलाकात हजरत जिब्राइल की ऐसी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हजरत जिब्राइल की मोहब्बत है, क्योंकि वो नूरानी फरिश्ते हैं। और जो उन्होंने पहली 5 आयत सुनाई तो आयत सुनने में हुजूर को इतना मजा आया कि कुरान सुनने का भी शौक पैदा हो रहा है, और सुने और सुने। लेकिन जिब्राइल तो आते ही बहुत दिन गुजर गए। उस दरमियान में अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दस्सिर की शुरू की आयतें उतारी। फिर लंबा जमाना हो गया, जिब्राइल का आना बंद और हुजूर जाते थे कि जिब्राइल बार बार आ गए, नूरानी मुलाकात बार बार हो गए, नूर से भरा हुआ कुरान बार बार उतने। जब आते ही जिब्राइल तो हुजूर को बहुत तकलीफ होती, इतनी तकलीफ होती कि बेचैनी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज बिल्लाह ही इरादा करते कि मेरी मौत आ जाए। और ये चीज तो दुनिया में रात दिन रोजाना सामने आती है, जब किसी से मोहब्बत होती है फिर उससे पूरी मुलाकात नहीं होती तो आदमी आपघात कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। हुजूर के दिल में जिब्राइल की मोहब्बत जोश मार रही है, कुरान सुनने का शौक पैदा हो रहा है। तो हुजूर पहाड़ में जाते कि पहाड़ कहते मैं खुद को नीचे गिरा दूं और मेरी मौत हो जाए, इसलिए कि कब तक मैं बेचैन रहूं। जिब्राइल आते नहीं, कुरान सुनाते नहीं, बहुत बेचैनी होती हुजूर को। इधर मक्का के अंदर दुश्मनों ने अफवाह फैलाना चालू कर दिया और उन दुश्मनों के अंदर सबसे आगे हुजूर की चची अबू लहब की बीवी उम्मे जमीन इसका बुरा तस्करा पूरे तबका किया था आदमी लहब में और चाची माँ हुजूर की आगे आगे सबसे बुराई करने वो बदमाश औरत यूं कहती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास जो शैतान आता था वो शैतान ने छोड़ दिया, वो जिब्रील को शैतान कह रही कि वो जो शैतान आता था कुरान लेकर के उसने उनको छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने ऐसे संगीन हालात में एक तरफ हुजूर के जेल है कुरान सुनने के लिए जिब्रील की मुलाकात के लिए, दूसरी तरफ अफवाह फैल रही है और दुश्मन आपके मुखालिफ हो रहे हैं, ऐसे हालात में अल्लाह ने ये सूरत उतारी और हुजूर को संभाल लिया। एक और खतरनाक हालात आए हुजूर के ऊपर, एक मरतबा आपकी उंगली मुबारक में से खून निकला, उंगली जख्मी हो गई, आपने कहा तो एक उंगली तो है जिसमें से खून निकला, तू जख्मी हो गई, ये जख्म और खून जो तुझे निकला है वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए निकला है और कुछ हुजूर बीमार हो गए और बीमारी की वजह से दो तीन रात हुजूर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सके, वरना रोजाना रात को रमजान नहीं रोजाना रात को हुजूर काबा के सामने आके तहज्जुद पढ़ते और तहज्जुद में खड़े होके कुरान पढ़ते और इतना प्यारा कुरान पढ़ते रात का अंधेरा होता, कोई शोर नहीं होता और काबा के सामने हुजूर अकेले खड़े हैं और मस्त हुजूर कुरान पढ़ते, तो मक्का में जितने काफिर थे वो सब अरबी थे, उनकी जुबान अरबी थी, भाषा अरबी थी, एक ने हुजूर का कुरान सुना, उसने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, यूं करते करते मक्का में जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबके सब लोगों को खबर हो गई कि ये सुबह सुबह में आधी रात के बाद कुरान पढ़ते और कुरान में बड़ी मजा है, बड़ा विश्वास है, बड़ा तेज आता है और इनको तो अरबी जुबान की समझ में आता था हुजूर क्या पढ़ते हैं, तो ये सब लोग उठी आते ही इनमें से, लेकिन खुल्लम खुल्ला तो सामने आ नहीं सकते क्योंकि दिन में हुजूर को गालियां दे रहे और रात को खुद कुरान सुनने आ रहे, इसीलिए सब काबा के आजू बाजू में वो जमाने में झाड़ियां थी, कांटे के दरख्त सब छुप जाते हुए, और दूसरी शरण ये कि दिन में ये सब आपस में मिल के हुजूर की मुखालफत करते विरोध करते और कुरान सुनने आवे तो एक दूसरे की शर्म लगे, इसीलिए मक्का का हर लीडर ये चाहता वो यहाँ छुपे वो यहाँ छुपे ताकि दूसरा उसको नहीं देख ले, सुनने का सबका दिल चाहता लेकिन साथ में ये भी चाहते कि कोई दूसरा मुझे देख नहीं है और इस तरह उनकी भीड़ लग जाती। अब जो तीन दिन दो दिन हुजूर बीमार रहे तहज्जुद में आ नहीं सके तो उसकी वजह से दुश्मनों को मौका मिल गया कि उनके ऊपर कुरान का आना नऊज़ बिल्ला बंद हो गया, पहले कुरान आता था उनके ऊपर अल्लाह के याद से, वो सुनाते थे, अब नहीं आता इसलिए सो जाते हैं। इसलिए उन्होंने हुजूर के खिलाफ अफवाह फैलाना चालू कर दी। उनका जो रब था, उनका जो अल्लाह था, उसने उनको छोड़ दिया, अब वो उनके ऊपर कुरान नहीं भेजता, ऐसी ऐसी बातें चलाना चालू कर दिया। ऐसे संगीन हालात, एक तरफ बीमारी, उंगली जख्मी हो गई, दूसरी तरफ आप तहज्जुद में उठ नहीं सके, तो दुश्मनों ने आपके खिलाफ प्रोपेगंडा चालू कर दिया। तीसरे भी कुछ संगीन हालात है, वो आया किया है कि मक्का वाले आपस में बैठ के बात करने लगे, ये हमारा भतीजा हुजूर के लिए, क्योंकि सब लीडर हुजूर के तकरीबन चचा होते थे, कोई सगा चचा, कोई रिश्ते का चचा, खुद अबू जहल के रिश्ते में हुजूर का चचा होता है, तो कहिए हमारा भतीजा अपने आप को नबी और पैगंबर कहता है, तो जरा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इम्तिहान लेना चाहिए, ये अल्लाह का नबी है कि नहीं है, सच्ची बात कहता है कि झूठी बात कहता है, तो कल इम्तिहान कैसे रहे। मक्का में तो सब जाहिल लोग थे, उल्टा चाल कुछ नहीं आता, मक्का के लोग सब अनपढ़ लोग थे, कब मदीना में यहूदी लोग रहते वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, बहुत ऊंची ऊंची उनके पास तालीम थी, तो यहूदी लोगों से जाकर के हम पूछे कि हमें इनकी परीक्षा लेनी, इम्तिहान लेना, कैसे ले। तो मक्का से कुछ आदमी गए बाकायदा मदीना और कहा कि हमारे भतीजे ने अपने आप को नबी होने का दावा किया है, वो सच्चे नबी है कि नहीं, हमें इम्तिहान लेना है, तो हमें कुछ सवाल बताओ कि हम उनको सवाल करें कि ये नबी है कि नहीं। तो यहूदियों ने उनको तीन सवाल बताए और तीन सवाल बता के यूं कहा कि देखो तीनों सवाल के जवाब दे दे तो अभी समझना कि वो नबी नहीं है, तीनों के जवाब नहीं दे तो भी समझना कि वो नबी नहीं है, दो के जवाब दे और एक का नहीं दे तो समझना कि वो अल्लाह के नबी है। देखो यहूद कितने बदमाश लोग, तीनों के जवाब दे तो भी नबी नहीं, तीनों के नहीं दे तो भी नबी नहीं, हाँ दो के दे एक का नहीं दे तो समझो कि नबी है। ये तो खुश हो गए, चलो अब हम इनका पक्का इम्तिहान लेते हैं कि ये नबी है कि नहीं, आए खुशी खुशी मदीना से मक्का, और वो जमाने में मक्का मदीना यानी 8-10-12 दिन सफर में लगे, आज की तरह नहीं कि 3-3.5 घंटे में कार में पहुंच जा रहे फटाफट। और आकर के उन्होंने हुजूर से सवाल किए, पहला सवाल ये किया कि वो 7 नौजवान घूम हो गए थे, उन नौजवानों का क्या किस्सा हुआ था वो बताओ, कौन नौजवान कहां घूम हो गए, क्या हुआ वो बताओ, वो किस्सा। दूसरा सवाल ये किया कि ज़ुल्करनैन बादशाह कौन सा बादशाह था, ये हमको बताओ। और तीसरा सवाल ये किया कि रूह क्या चीज होती है, ये आत्मा ये रूह क्या चीज होती है, ये तीन सवाल थे। ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, ये सुनकरने बादशाह कौन सा, और 7 नौजवान कौन के जो गुम हो गए, जवाब दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया क्योंकि हुजूर को तीनों सवारी के जवाब मालूम नहीं थे, इसीलिए हुजूर ने फरमा दिया कि कल बताऊंगा। और नीयत क्या थी कि जिब्रील आएंगे तो मैं जिब्रील अमीन को पूछ लूंगा और कल इनको जवाब दे दूंगा, ये हुजूर की नीयत। अब रात हुई जिब्रील आएगी, कल हो गई जिब्रील आएगी, दो दिन हो गए जिब्रील आएगी, दस दिन हो गए जिब्रील नहीं आए, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तकरीबन दिन हो गए जिब्रील आए। अब एक तो मक्का दुश्मन कायदेदार हुजूर अकेले, दो चार सहाबा, बाकी पूरा मक्का दुश्मन, और सवाल भी किया था उन्होंने आपका इम्तिहान करेंगे, जवाब नहीं होगा। तो सब ने तालियां कोई बजा रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है कि देखो देखो वो अपने आप को नबी कहते हैं, झूठा धर्म नहीं रंग देना है, पूरे मक्का में ये चर्चा हो रहा है। बहुत सारे दिन गुजर गए, हुजूर परेशान है, परेशान बेचैन। बहुत दिनों के बाद एक दिन हजरत जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर के क्या कहा, कवला तकूलन लिशैइन इन्नी काहिनुन कालिक वदा इल्ला अन यशाअल्लाह। पहली बात ये कही कि आपके सामने जब इन्होंने सवालात किए थे तो आपने क्या कहा कि कल जवाब दूंगा, लेकिन आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। आइंदा के लिए याद रखो, जब आपको कोई सवाल करे और आप फ्यूचर मुस्तकबिल भविष्य के लिए कोई जवाब दो तो यू मत कहो कि कल कहूंगा, ये कहो इंशाअल्लाह मैं कल कहूंगा, ये अल्लाह की इच्छा है थी। अरबी ग्रामर के एतबार से यहाँ बहुत ताकीद है, बहुत ताकीद कि आप अब आइंदा बिल्कुल भी इंशाअल्लाह के बगैर कोई बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छा। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने सूरह दुहा होता है कि आप तो ये दुश्मन के लिए समझते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को छोड़ दिया, अल्लाह अपने नबी को भूल गया, अल्लाह ने नबी के ऊपर कुरान उतारना बंद कर दिया, आपके दुश्मन ये समझते हैं। कई दुश्मनों को जवाब दो, जवाब दो डबल कसम खाई अल्लाह ने, और दो कसम खा के अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी के दुश्मनों चुप रहो, मैंने अपने नबी को छोड़ा नहीं, मैंने अपने नबी पर कुरान उतारना बंद किया नहीं। पहली कसम अल्लाह ने खाई वह दुहा, ये दुहा क्या चीज है, सुबह में जब सूरज निकलता तो उसकी रोशनी कैसी होती है, धीमी धीमी होती है, हम सूरज को देख सकते हैं, जो सनराइज पॉइंट होते हैं लोग वहां देखने जाते हैं, सूर्योदय कैसे होता है, सूरज का ग्लू कैसे होता है, लोग उसको देखने जाते हैं, और बहुत अजीब मंजर होता है कि देखो कैसे सूरज निकला, फिर शराब का वक्त कैसे हुआ, वो तो नेचुरली देखने को मिलता है। फिर दो तीन घंटे निकल जाते हैं, 9-10 बजने का टाइम होता है तो सूरज ऊपर आ जाता है और उस वक्त उसकी रोशनी एकदम फैल जाती है, पूरी दुनिया में रोशनी रोशनी धूप हो गई। और ये ऐसा वक्त होता है कि हर सीजन में हर मौसम के अंदर उस वक्त आबो हवा बिल्कुल दरमियानी होती है। ठंडी के अंदर भी 10-1 बजे क्या होता है, ठंडी काफी खत्म हो गई और गर्मी शुरू हो गई। गर्मी की मौसम के अंदर भी 9-10 बजे ज्यादा गर्मी नहीं होती, ठंड होती, बाद में गर्मी बढ़ना चालू होती है, ये टाइम होता है। तो ये टाइम ऐसा टाइम है कि उसमें मौसम पूरे साल तकरीबन बराबर बराबर होता है, इसीलिए अल्लाह ताला को उस वक्त की पसंद होता है। ये जो 9-10 बजे का वक्त है उस टाइम को अरबी जबान में दोहा कहते हैं और उसी को हमारे यहाँ कहते हैं जाश का टाइम। ये जाश किसी नमाज का नाम नहीं है, हम लोग कहते हैं जाश की नमाज पढ़ो, ये जाश किसी नमाज का नाम नहीं है। जाश के वक्त पे जो नमाज पढ़ी जाती है उसी को हम कहते हैं जाश की नमाज। जाश का कोई टाइम का नाम है, ये जो 10-1 बजे का टाइम है उसको कहते हैं जाश उर्दू में और अरबी में कहते हैं दोहा। और उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसको कहते हैं जाश की नमाज। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि रात का अंधेरा होता है तो रात के अंधेरे के अंदर ये इंसान सोचता है कि ऐसा अंधेरा है कि पता नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी, ये अंधेरा खत्म होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब सूरज निकल के सामने आता है तो इंसान को यकीन हो जाता है कि रात की तमाम अंधेरी खत्म हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से 35-40 दिन से या 6 महीने से जिब्राइल अमीन आते नहीं थे तो हुजूर को यह शक हो गया कि पता नहीं अब जिब्राइल अमीन आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन कितने दिनों के बाद जिब्राइल तशरीफ लाए तो अब यकीन रखो कि अल्लाह ताला आपके पास जिब्राइल को पूरी जिंदगी भेजेंगे। अब जिब्राइल का आना बंद नहीं होगा तो अल्लाह ने सुबह के कांटे की कसम खाई, सुबह सुबह की धूप की कसम खाई कि कसम है धूप की 9-10 बजे की धूप की, कसम है रात की पूरी अंधेरी रात। जब रात होती है रात में भी अलग अलग वक्त होता है। देखो अभी सूरज डूबेगा तकरीबन 7:20-19 के होगा, तब रात कैसी होती है, थोड़ा अंधेरा होता है, फिर आसमान लाल हो जाता है, अंधेरा ज्यादा हो जाता है, फिर आसमान सफेद हो जाता है, अंधेरा ज्यादा हो जाता है, फिर वो सफेदी खत्म हो जाती है, एकदम काला अंधेरा होता है, तब ईशा की अजान होती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और ईशा के बाद लोग सोने की तैयारी करते हैं, नींद निकालने की तैयारी करते हैं, तो जब रात पूरी काली हो जाए अल्लाह ताला उस काली काली रातों की कसम खा रहे पूरी धूप की कसम और पूरी रात की कसम अल्लाह ने दो चीजों की कसम खा। अब यह एक मसला समझ लो, अल्लाह ताला दुनिया की चीजों की कसम खा सकते हैं, ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह दिन की कसम खावे, अल्लाह रात की कसम खावे, अल्लाह टाइम की कसम खावे, अल्लाह ताला जैतून फल की कसम खावे, अल्लाह अंजीर की कसम खावे, ये सब कसम कुरान में है। लेकिन हम लोग कसम नहीं खा सकते। हम लोगों को अगर कसम खानी हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, उसके सिवा किसी और की कसम खाना हमारे लिए जायज नहीं है। कोई माँ की कसम नहीं खा सकता, कोई बाप की कसम नहीं खा सकता, कोई काबा की कसम नहीं खा सकता, कोई कुरान की कसम नहीं खा सकता। अगर कसम खानी हो तो सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम खा, वो भी मजबूरी के अंदर। और अल्लाह जिसकी चाहे उसकी कसम खा ले कुरान से। और दूसरी खास बात समझने की है कि वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का कसम है। बाद हज़रात ने इस पर नुक्ता बयान किया कि यहाँ दुहा से मुराद है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा, ऐसा नूरानी चेहरा कि सुबह की जो धूप होती है 9-10 बजे की, वो कैसी रोशन, कैसी चमकती हुई होती है, तो उस धूप से भी ज्यादा रोशन हमारे हुजूर का नूरानी चेहरा है। अल्लाह उसकी कसम खाए। सूरज की रोशनी कैसी कि सारी दुनिया को जगमगा दे रहे, सारी दुनिया का अंधेरा खत्म कर दे रहे, का मेरे हुजूर का नूरानी चेहरा ऐसा कि उस नूरानी चेहरे की बरकत से सारी दुनिया में से कुफ्र शिर्क की अंधेरी खत्म हो जाए और इंसानों के दिल नूरानी और मुनव्वर हो जाए। वल्लैल इज़ा सजा का इसमें हुजूर के काले काले बालों की अल्लाह ने कसम खाई है, का ऐसे प्यारे चमकते काले बाल कि उस काले बाल के सामने रात की अंधेरी भी कुछ नहीं का लगता ऐसा है कि रात के अंदर जो कालापन आया, रात में जो अंधेरा आया, वो हुजूर के काले बालों के भीख मांग के आया। उस काले बालों की अल्लाह ताला तेरे कुरान में कसम खा रहे, ये दो कसम खा रही अल्लाह ताला है। और फिर दुश्मनों को जवाब दिया अल्लाह ने, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं, आपको अकेला नहीं कर दिया, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह की मदद आपके साथ है, अल्लाह अपने फरिश्तों को भी भेजेंगे, अल्लाह अपना कुरान भी भेजेंगे, आप बिल्कुल न घबराओ। दो कसम खाते अल्लाह ने बता, फिर आगे अल्लाह ताला ने हुजूर को तसल्ली दी, कितनी प्यारी प्यारी मोहब्बत भरी तसल्ली दी, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى। अल्लाह कहे नबी आपको दुनिया में बहुत तकलीफ है, हम देख रहे हैं, एक तरफ आपके दुश्मन, दूसरी तरफ आपको भूख और प्यास, आपके साथियों को भूख और प्यास, बहुत तकलीफ है आपको दुनिया में, लेकिन आप मत घबराओ, मरने के बाद जो आखिरत की जिंदगी आएगी अल्लाह ताला आपकी वो जिंदगी को बहुत अच्छी करेंगे, वहां अल्लाह आपको ऐसी नेमत देंगे कि आप जो है बड़े मजे के अंदर रहोगे। और ये हर मुसलमान के वास्ते है कि मुसलमान के लिए अल्लाह ने दुनिया को तकलीफ की जगह बनाया, ये तकलीफ की जगह और बहुत मजे करने की जगह का वो आखिरत है, मरने के बाद की जिंदगी। देखो हर साल रमजान आती है और रोजे रखने के सुबह सारी से शाम तक भूखे रहने का, हम तो अल्लाह के बड़े फजल करम से बड़े राहत में है। आजकल जाके देख लो बेचारे यूरोप वाले रोजा तो रख रहे 20 घंटे का रोजा, 20 कलाक का रोजा, तरावी पढ़ के फौरन तैयारी करनी होती है। मैं रमजान से 25 दिन पहले इंग्लैंड में था, पुर्तगाल में और फ्रांस में था, तो वहां अजीब हाल है, 11:30 बजे ईशा की नमाज और 1:30 बजे फजर की नमाज, 11:30 बजे असर के बाद रात का खाना खाने का। आजकल वो मगरिब हो रही है 10:05 के ऊपर मगरिब हो रही है और 11:30 बजे ईशा और 1:30 बजे 1:35 पे फजर। हम लोग वहां इंग्लैंड में इन दिनों में बयानों में लोगों को कहते कि आप उन लोगों को बहुत मजा है कि वो जो हम किताबों में सुनते हैं कि सहाबा और हुजूर पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ते थे, क्या तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है कि पूरी रात तहज्जुद पढ़ो 12 बजे से 1:30 बजे तक 1:30 घंटा पढ़ने का और सवाब तुमको हासिल हो रहा है पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का। कमा लो, कमाने के लिए धन है। तो कहते ये फजीलत तो बहुत अच्छी, आगे रमजान आ रहा है उसने क्या कर दिया, वो हाथ में थोड़े लड्डू ले रहे, एक हाथ में नहीं है वो रोजा रख रहा है आजकल 20-30 घंटे का। तो कब मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है तकलीफ की जगह और मौज मजे करने की जगह, वो तो मरने के बाद की अल्लाह ने तकलीफ, क्या आपको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप बिल्कुल मत घबराओ, अल्लाह आपको आखिरत में ऐसी ऐसी नेमत देंगे बस फिर वहां आपको मजे मजे। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ रही है, आप 40 साल की उम्र हुई अल्लाह ने आपको नबी बनाया, 41वां साल आया, 42वां साल आया, जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है ऐसे ऐसे अल्लाह के यहाँ आपके दर्जे भी ऊंचे हो रहे हैं। देखो माशाल्लाह, पहला रोजा हमने रखा उस दिन हमारा जन्नत में एक दर्जा था, दूसरा रोजा रखा हमारा दर्जा ऊंचा हो गया, तीसरा रोजा रखा हमारा दर्जा ऊंचा हो गया, चौथा रोजा रखा और ऊंचा हो गया और वो हम जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। कुरान का भी यही हाल, पहले रोजे में हमने एक सुपारा पढ़ा तो हमारा दर्जा इतना ऊंचा हुआ, दूसरे रोज दूसरा सुपारा पढ़ा और ऊंचे हो गए। तरावी में भी यही हाल, आज एक सुपारा तरावी में पढ़ा और आगे आगे बढ़ते जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नबी हर दिन हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, जन्नत में अल्लाह की रजा में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मारिफत में, अल्लाह के प्यार में, अल्लाह की मोहब्बत और इश्क में रोजाना अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छी मेहनत अल्लाह ताला आपको ऐसी चीज देंगे कि आप राजी हो जाए, आपका रब आपका खुदा आपको ऐसी नेमत देगा कि आप राजी और खुश हो जाओगे। अल्लाह ताला आपको जन्नत में वो जगह देंगे कि आप राजी हो जाएंगे और जन्नत में सबसे अच्छी जगह, उस जगह का नाम है मकाम महमूद, सबसे अच्छी जगह जन्नत की, उससे अच्छा कोई घर है ही नहीं जन्नत में। और अल्लाह ताला ने उस मकाम महमूद के लिए ये फरमाया कि अपने नबी और पैगंबरों में से एक को मैं वो जगा दूंगा, एक को किसको अल्लाह ने पहले में छुपा दिया और फिर ये फरमाया कि जिस नबी की उम्मत अपने नबी के लिए अल्लाह ताला के सामने जितनी ज्यादा अर्जी भेजे, दरखास्त भेजे, विनती भेजे, उस नबी को अल्लाह ताला वो मकाम दे देंगे। अपनी उम्मत के हाथ में है तो वो जितना ज्यादा अपने नबी के लिए दुआ करेंगे, अर्जी करेंगे, दरखास्त करेंगे और जिस नबी के लिए अर्जी ज्यादा हो जाएगी अल्लाह ताला वो नबी को दर्जा दे देंगे। अब हरे उम्मत ने अल्लाह से कहा ऐसा हमारे नबी को मकाम महमूद दे दो, हर उम्मत से अपने नबी के लिए मांगा और इस उम्मत के लिए इतनी आसानी हो गई, इतनी आसानी हो गई कि पांचों अजान के बाद अल्लाह ताला ने वो दुआ बतला दी कि उस दुआ में हम अपने नबी के लिए वो मकाम का सवाल करते। अजान के बाद जो दुआ है اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوكيل له الفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته لأذان بعد الدعاء ولا روزانہ پانچ اذان کے بعد یہ امت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتی ہے اے اللہ ہمارے حضور کو مقام محمود دے دیجیے اور اس نبی کے لیے عرضی زیادہ ہو گئی دعا زیادہ ہو گئی۔ آج سے تقریباً 300 سال پہلے تقریباً حضرت مجدد عرض ثانی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر پنجاب کے اندر سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے بڑے بزرگوں میں تھے، بہت زبردست صاحب کرامت اللہ کے ولی گزرے، ان کی باپ کرامت آج تک زندہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ میں نے کشف کے ذریعے سے لوہے محفوظ میں دیکھ لیا کہ امت محمدیہ نے اپنے نبی کے لیے اتنی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نصیب ہو گیا۔ حضور کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس امت کی دعا زیادہ ہو گئی تمام امت کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ وہ مقام انشاءاللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز کیا جب یہ آئے اتری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا مقام دیں گے، ایسی جگہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ حضور نے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما دیا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا، تو کہا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ کہ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میری پوری امت جنت میں آ جاوے تب جا کر کے میں راضی ہوں گا۔ کیونکہ محبت حضور کو امت کے ساتھ، اللہ ہمیں اس کا کوئی حصہ عطا فرمائے کہ ہمارے دین میں حضور کے ساتھ ایسی محبت آ جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ فمن تبعنی فإنه مني ومن عصانی فإنك غفور رحیم۔ اے اللہ جو میرے راستے پر چلے وہ تو میرا ہے، ابراہیم ہی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی امت کے لیے کہا ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الكريم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو معاف کر دے تو تم معاف کرنے کے اوپر بھی قدرت رکھنے والا خدا ہے۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات حضور نے پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑھی، اور یہ بات پڑھی قرآن میں، اور حضور نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے رونے لگے۔ حضور بہت روئے، بہت روئے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے نبی کیوں رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے نبی کو پوچھو تم کیوں رو رہے ہو۔ جبرائیل نے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि मुझे रोना आ रहा है मेरी उम्मत के बारे के अंदर कि मेरी उम्मत का अल्लाह के यहाँ क्या होगा, इसके लिए मुझे रोना आ रहा। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए से जवाब भेजा कि आप इत्मीनान से रहो, मैं आपको अपनी उम्मत के बारे में खुश कर दूंगा, आपको नाराज नहीं करूंगा। अल्लाह के यहां से जवाब दे, आपको खुश कर दूंगा आपकी उम्मत के बारे में, मैं आपकी उम्मत के बारे में आपको नाराज नहीं करूंगा। कैसी मोहब्बत और प्यार है उम्मत के साथ कि जब अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे रहे कि मैं आपको ऐसी चीज दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, ऐसे मौके पर भी याद आए तो हुजूर को अपनी उम्मत याद आए। अल्लाह हम सब की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से हुजूर को वो बेहतरीन बदला अता फरमाए। तमाम नबियों को जो उनकी उम्मत की तरफ से मिला उससे भी ज्यादा बेहतर बदला अल्लाह हुजूर को हमारी तरफ से अता करे। आगे अल्लाह फरमाते हैं अलम यजिद यतीमन फआवा। ए नबी वो जमाना याद करो आप यतीम थे और हमने कैसे आपको संभाला और सिखाना दिया। अल्लाहु अकबर, अभी तो आप अपनी माँ आमिना के पेट में थे और हुजूर के अब्बा हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गए। जिस दिन पैदा हुए उस दिन हुजूर यतीम बन करके पैदा हो गए, ऐसी यतीमी। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी हिफाजत फरमाई, पहले दादा जान ने आपको पाला, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, फिर थोड़े दिनों में दादा का इंतकाल हो गया, तो फिर चचा जान ने आपकी हिम्मत की, चचा ने आपको पाला और बड़ा किया, चचा अब्दुल तालिब ने आपकी हिम्मत की, और वो बचपन में हुजूर अभी बहुत छोटे बच्चे थे कि माँ हमें ना कभी इंतकाल हो गया। यतीमी की जिंदगी आपने गुजारी, लेकिन जैसा कि कहा कहने वाले यतीमे बिना करदा फरहान कुतुब खाने चंद इल्लत बुजुर्ग। का एक यतीम बच्चा जिसने किसी मकतब और मदरसे में जाकर के कुरान पढ़ना भी नहीं सीखा, अली बात की तख्ती भी नहीं सीखी, अल्लाह ने उसको वो कुरान अदा फरमाया कि दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हुजूर के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा इल्म अल्लाह ने अलम यजिद कर यतीमन फआवा ووجدك ضالا فهدى। आप पहले कुछ नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको सब सिखा दिया। मा कुंत तदरीम الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا। आपको इतना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद आपको वो नूर अता फरमाया, वो इल्म की रोशनी अता फरमाई, अपने यहां से अल्लाह ताला ने वो नेमतें अता फरमाई कि आप सारी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बने, खुद भी हिदायत कर और सारी दुनिया कयामत तक वो आपसे हिदायत हासिल कर रही। पहले आप फकीर थे, कमजोर थे, मोहताज थे, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया। कैसे मालदार बनाया? देखो अल्लाह की नेमत है, हुजूर के अब्बा आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए थे, कुछ नहीं, बहुत मामूली चीजें, थोड़ी सी चीजें, लेकिन क्या मिला? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई, 25 बरस की उम्र हुजूर की और हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस की, और हजरत खदीजा बहुत मालदार औरत थी, उसने सारा का सारा माल हुजूर के पीछे लगा दिया, ईद के वास्ते लगा दिया। कहे नबी आपके पास तो कुछ नहीं था, हमने आपको धनी और मालदार बना दिया। इसलिए हजरत खदीजा के हुजूर को बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए बहुत कुर्बानी की हजरत खदीजा ने, और जब तक हजरत खदीजा जिंदा नहीं हुजूर की दूसरी शादी नहीं हुई। जितनी भी शादियां हुई हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद हुई, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी हुजूर को, क्योंकि एक तो कुंवारी बीवी थी, बाकी सारी बीवियां बेवा थी, एक कुंवारी लड़की हजरत आयशा। हजरत आयशा कहती है मुझसे हुजूर को बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, लेकिन हुजूर जब हजरत खदीजा की बात करते तो कहा ऐसी बातें करते तो हमको हसर आने लगती, तो हुजूर हजरत खदीजा की इतनी तारीफ करते। तो कहा एक मरतबा हमने कहा हुजूर आप तो हजरत खदीजा की बहुत तारीफ करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी खदीजा खदीजा की, मैं उसके लिए कोई तारीफ नहीं कर सकता, उसने मेरी कैसी खिदमत की, कैसी मेरी मोहब्बत, कैसा मेरे साथ उसने उसने सलूक किया। तो फरमाया कि अलम यजिदका यतीमन फआवा ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر। ये हुजूर को सुनाना है और सबक हम सब कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए, कि किसी भी यतीम का हक मत दबा, किसी यतीम का माल मत खा जाना। ये बहुत सख्त बात अल्लाह ने फरमाई, जो लोग यतीम का माल खा जाते हैं वो लोग अल्लाह के नाम बड़े भारी गुनहगार हैं। किसी भी यतीम से जिस बच्चे का बाप मर गया हो, जिस लड़की का बाप मर गया हो, का उसका माल कभी दबा मत लेना, उसका माल खा मत जाना। उसी जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا। जो लोग यतीम का माल खा जाते वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते हैं, इसीलिए कभी किसी यतीम का माल मत खाना। وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ। जब कोई सवाल करने आवे तो उसको झिड़क करके डांट करके बता मत देना, कोई भी सवाल करने आवे। देखो सवाल करने कोई आवे तो अपने पास हो गए तो दे दो, नहीं दे सके तो मोहब्बत से, प्यार से, नरमी से दे दो, भाई अभी हमारे पास कुछ नहीं है, बाद में आने पर दूंगा, या दुआ दे दो अल्लाह तुम्हारी जरूरत पूरी करे। लेकिन सवाल करने वालों को तुम गाली दो, उन पर गर्म हो जाओ, उन पर गुस्से हो जाओ, ये तरीका सही नहीं। उससे सब सवाल करने वाले आ गए, कोई चंदा लेने वाला आया, कोई फकीर आया, कोई मोहताज आया, कोई दीन की बात पूछने आया, किसी के साथ सख्ती नहीं करनी है, तो दे दो, नहीं है तो दे दो के भाई बाद में आ, या उसको दुआ देकर के आगे कर दो। और अल्लाह की जो नेमत हो उस नेमत को लोगों को बदलाओ, उसको जाहिर करो नेमत। अल्लाह ताला हमको नेमत देते हैं, माल देते हैं, दौलत देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं, तो उस नेमत की शुक्रगुजारी बंदों को करनी है। बहुत से इंसानों की हालत ऐसी होती है अल्लाह नेमत देते फिर भी उन लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि वो जान बूझ कर फकीरों जैसा रहना पसंद करे। ये चीज अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा नहीं है। हुजूर के पास जब अच्छी चादर आती थी हुजूर उसको ओढ़ करके आते थे, अच्छा खाना आता था हुजूर उसको खाते थे, जो भी नेमत अल्लाह ताला दे रहे उस नेमत को जाहिर करो, नेमत की शुक्रगुजारी। अल्लाह ने माल दिया तो उसको अल्लाह के रास्ते में खैरात करो, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी तो बदन और तंदुरुस्ती के जरिए दीन का काम करो, खिदमत करो, ये भी नेमत की शुक्रगुजारी। कोई आदमी तुमको कोई नेमत दे दे तो तुम उसके बदले में कुछ कोई चीज दे दो, कम से कम उसकी तारीफ कर दो, ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत सही है, और उसके लिए दुआ कर दो, ये सब नेमत की शुक्रगुजारी। तो सूरत में अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और साथ में आने वाली उम्मत के लिए बड़ी प्यारी अहम तालीमात बयान फरमाई। अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने वाला बना दे, यतीम का माल खाने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, सवाल करने वालों को छिड़क लेते अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह जो नेमत अता फरमाए उस नेमत की अल्लाह हमें शुक्रगुजारी अता फरमाए।